श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 11 दिनांक 20 अप्रैल 2015 स्पीकर तत्रेता प्रभु
पदांतिकम वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु नवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत मदेव मे विशतो मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पीते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते आनंदलीला मय विग्रहाय हेमं मदिव्या सविसुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य सुंदराय नमो नमस्ते चैतन्य सुंदराय नमो नमस्ते हरे कृष्णा सभी भक्तों को श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जीवों का गुणों का वर्णन करते हैं कि प्राय सभी जीव में 50 तक गुण होते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी 50 गुण होते हैं ब्रह्मा में भी। और उसके आगे वर्णन करते हैं कि भगवान शिव में 55 गुण होते हैं, जो ब्रह्मा जी में 50 तक गुण होते हैं, क्योंकि वो जीव की श्रेणी में आते हैं ब्रह्मा जी। और जो जीव शिव जी है उनमें 55 गुण होते हैं, और श्री विष्णु नारायण में 60 गुण होते हैं, और भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण में 66 गुण होते हैं सर्वोपरि। तो इसमें 4 गुण विशेष होते हैं भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण में, तो 4 गुण रूप माधुरी लीला माधुरी वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। रूप माधुरी वेणु माधुरी लीला माधुरी और प्रेम माधुरी ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण में विशिष्ट गुण है जो 64 गुण श्याम सुंदर में पाए जाते हैं। तो यहाँ जो वर्णन हो रहा है इस वेणुगीत में, जो उन चार गुण विशिष्ट है, विशेष है, उनमें से वेणुगीत का वर्णन हो रहा है और रूप माधुरी का भी साथ साथ वर्णन हो रहा है। तो जो आज के श्लोक में है, धन्यास्म मूढ़ गतियो अपि हिरण्ययताम, श्री गोपिया कहते हैं कि धन्य है उस हिरणी जो निम्न योनि में जन्म लेकर भी भगवान कृष्ण का, श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, और जो नंद नंदन के नंद महाराज के जो पुत्र हैं विचित्र वेश धारण करके उस जंगल में प्रवेश किए हैं, और आकर्ण रेणु रणितम सह कृष्ण सारा, और जब वो वेणु बजाते हैं उस जंगल में प्रवेश करके, वन में प्रवेश करके, और वेणु बजाते हैं तब उस वेणु की ध्वनि सुनकर हिरण्या और हिरण दोनों भागकर भगवान कृष्ण के पास, श्याम सुंदर के पास आते हैं, और पूंजाम दतु विरचिताम प्राणयावलोके, और पूंजा करती है प्राणयावलोके प्रेम भरी दृष्टि देख कर श्री श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर से पूंजा करती है। तो रूप माधुरी जो है भगवान कृष्ण की, बरहा पीड़म बपु नटवर, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णी कारकम, जो हमने इसी अध्याय का 5 नंबर श्लोक सुना, भगवान वन में प्रवेश करते समय वन वेश धारण करते हैं, जो माता यशोदा ने मोतियों की माला वो जो पहनाई थी वो सखा निकाल देते हैं, और वन का आभूषण यानी वन माला जो धारण करते हैं, वन के जो फूल होते हैं अनेक, उससे उसको सजाते हैं। विचित्र वेशम, उस वेश से वो विचित्र लगते हैं भगवान कृष्ण, और साथ साथ में वेणु बजाते हैं, और वेणु की ध्वनि सुनकर हिरण्या और हिरण उनको भागकर पास आते हैं। तो ये भगवान श्याम सुंदर का स्वाभाविक रूप माधुरी का वर्णन है, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं कि हर कोई जीव उसे आकृष्ट हो जाते हैं। और कल हमने सुना जो भगवान कृष्ण वेणु बजा रहे थे तब गोवर्धन पर्वत के ऊपर शिखरों पर जो पशु चरवाहा कर रहे थे या हिरण आदि से भी पशु, जब वो वेणु ध्वनि सुनी तो दौड़कर श्याम सुंदर के पास आ गए। तो वेणु ध्वनि मधुर है और साथ साथ में रूप भी मधुर है। तो श्याम सुंदर का रूप मधुरी देखकर हिरण्या आकर उस श्याम सुंदर का प्रेम भरी दृष्टि से दर्शन करते हैं, देखते हैं और पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो रूप माधुरी है उनको सभी जीव आकृष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक के जो हिंसक प्राणी भी होते हैं वो भी आकृष्ट हो जाते हैं अपनी हिंसा का स्वभाव छोड़कर। जब भगवान रामचंद्र सेतु का निर्माण किए और निर्माण करने के बाद उस रामेश्वर से श्रीलंका में जो प्रयास जब प्रयाण जाने का प्रयाण कर रहे थे, और उसी समय जब भगवान रामचंद्र ने उस सेतु पर अपना चरण रखा, जैसे ही चरण रखे थोड़ा समुद्र के ओर चले तो समुद्र में जो प्राणियाँ जलसर थे और भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करने के लिए वो सेतु के पास आने लगे। जैसे भगवान रामचंद्र उस सेतु से आगे चलने लगे और प्राणियाँ सेतु के निकट आने लगे, जो अपने हिंसा स्वभाव छोड़कर मगर, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो छोटी छोटी मछलियों को खा लेती हैं, और बड़े बड़े मगर अन्य छोटे छोटे प्राणियों को स्वाहा कर देते हैं, ऐसे हिंसक प्राणी भी भगवान श्री रामचंद्र दशरथ नंदन जब उस सेतु पर चल रहे थे तो उनको देखने के लिए समुद्र से सभी प्राणी एकत्रित होने लगे, और जैसे आज जैसे आगे जाने लगे श्री रामचंद्र जी तो दोनों साइड सेतु के दोनों तरफ पशुओं की, उस हिंसक प्राणियों की कतार लग गई, और वैसे ही वो सेतु बहुत छोड़ा नहीं था, पतला पतला था, और भगवान रामचंद्र की वानर सेना करोड़ों की संख्या में थी, तो उस सेतु पर चलने के लिए वो जगह कम पड़ रहा था। तो उस बंदर जो वानर सेना थी, तो उस जो जलसर भगवान रामचंद्र का दर्शन कर रहे थे, उस दर्शन में जो सेतु के साथ लग गए थे चिपक कर, तो उसी पर पैर रख कर बंदर आगे चलते थे। उस हिंसक प्राणी भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करने में इतना मस्त और मग्न थे, को देखते रह गए श्री रामचंद्र को, और उन पर जो वानर सेना थी वो पांव रख रख कर आगे जा रहे थे। ते भगवान का रूप का स्वभाव ऐसा, कोई भी व्यक्ति अगर हिंसक प्राणी भी क्यों ना हो, अगर भगवान का दर्शन कर लेता है तो अपना स्वभाव भूल जाता है। जो हिंसा करने वाले स्वभाव रहते, जो मगरमच्छ आते होते हैं, बड़े खूंखार रहते हैं, किसी को भी देख ले तो खा लेते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करके वो अपना स्वभाव भूल गए, और स्वभाव भूल कर भगवान रामचंद्र को एक नज़र से दर्शन करने लगे। जिस तरह इधर हिरणिया दर्शन कर रही है, उसी प्रकार उधर सभी प्राणी हिंसक जो जलसर थे वो सभी भगवान रामचंद्र का दर्शन करने लगे, और इतना उस आनंद में उसको सुख प्राप्त हो रहा था, ताकि उन पर चढ़कर जो वानर सेना पूरी थी उन पर चढ़ चढ़कर आगे जा रही थी, और वो हिंसक प्राणी भगवान रामचंद्र का दर्शन कर रहे थे। तो ये रूप का वर्णन है भगवान का। जो कोई भी जीव भगवान का दर्शन कर लेता है तो निश्चित रूप से वो इतना आकृष्ट हो जाता है ताकि उनको और कहीं अच्छा नहीं लगता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर किसी को गृहस्थ जीवन में सुख प्राप्त करना है तो उनको कभी वृंदावन नहीं जाना चाहिए। अगर भूल से भी वो वृंदावन चला गया तो उनको कैसी घाट पर कभी नहीं जाना चाहिए। अगर वो कैसी घाट पर अगर चला गया तो वहाँ जो श्याम सुंदर है, वो नित्य वेणु बजाते, अगर उसका दर्शन कर लिया किसी ने तो वो सब कुछ छोड़कर उनके शरणों में आश्रित हो जाएगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर किसी को अपने गृहस्थ जीवन में सुख प्राप्त करना है तो कभी वृंदावन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर भगवान कृष्ण की लीला और रूप का जो वर्णन सुनते हैं तो निश्चित रूप से इस जीव का स्वभाव है वो उसमें आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान का ये श्याम सुंदर रूप, विचित्र वेशम, जो विचित्र वेश धारण किए थे, इसी अध्याय में 19 नंबर श्लोक में इस विचित्र वेश कैसा था उसका वर्णन हम सुनेंगे आगे। तो उस इसी अध्याय में अंत में श्लोक आएगा 19 नंबर का श्लोक, उसमें विचित्र वेशम का किस तरह भगवान ने वेश धारण किया थे उसका विस्तार से वर्णन है। गो गोप के अनु वनम नियत उदारम वेणु स्वने क्लेशस्तनु घुस सख्यम अस्पर्धम गति गताम पुलक तरुणयाम निर्योग पास कृत लक्षणीय विचित्र निर्योग पासम। निर्योग इसी को कहते हैं जो गाय दोहन के समय उनको पांव बांधने के लिए जो रस्सी होती है उनको निर्योग कहते हैं। तो निर्योग और रस्सी हमेशा भगवान कृष्ण और बलराम साथ में लेके जाते हैं, और उस रस्सी में भी विशिष्ट लक्षण होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहाँ कहते हैं कि उस रस्सी इतनी सुंदर होती है, जो पीला रंग की वो रस्सी, पीला रंग के वस्त्र से वो रस्सी बनाते हैं, पर उसमें जो अंत में उनको लटकन भी लगाते हैं, जिस तरह माता जी लोग जो जप माला करते हैं उसमें लटकन लगाते हैं ना काउंटर में, सुंदर सुंदर, उसी प्रकार उस रस्सी में भी लटकन लगे होते रहते हैं। तो उस रस्सी को लेकर भगवान कृष्ण श्याम सुंदर गौचारण के लिए जाते हैं, और कभी कभी उस रस्सी को अपने कमर में भी बांध देते हैं। कभी कभी हमारे गिरधारी प्रभु गिरधारी जी को बांधते हैं उस रस्सी को कमर में शोभा के लिए, और कभी कभी उस रस्सी को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अपने सर में पगड़ी के रूप में भी बांध देते हैं। तो इसी प्रकार वो विचित्र वेश बनाते हैं, उस रस्सी को कभी कमर में बांधते हैं, कभी सर पर बांधते हैं, और इसी तरह विचित्र वेश को देखकर उस हिरण्या भगवान कृष्ण से आकृष्ट होकर भगवान का दर्शन करने के लिए आती है। लेकिन गोपियाँ कहती है कि वो अकेले नहीं आती हिरण्या, उनके साथ अपने पति को भी लेकर आती है, हिरण को भी। तो धन्य है वो हिरण्या और हिरण जो भगवान कृष्ण को देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए साथ में जाते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। वैसे उनका पति भी है, वो तो साक्षात भगवान का ही विस्तार है, लेकिन वो अपने आप को इस तरह दुर्भाग्य मानते हुए कहते हैं कि हमारा पति इतना ईर्ष्या करते हैं कृष्ण से, ताकि उनके सुगंध भी वो लेना नहीं चाहते हैं। तो धन्य है इस हिरण और हिरणिया जो भगवान के श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। और इसमें जो पूजा ददम विरचिताम शब्द आए वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूजाम, पूजा किया, किस तरह पूजा किया, आरती करके नहीं, प्राय हम पूजा करते जो हमारा संस्था का नियम है, जो ब्राह्मण दीक्षा लेकर लेते हैं उसी को ही पूजा का अवसर प्राप्त होता है। वही ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं, भोग निवेदन कर सकते हैं या श्रृंगार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मूढ़ गति है, जो निम्न योनि में जन्म धारण करके भी गोपियाँ कहती है कि वह धन्य है जो पूजा कर रही है हिरण्या और हिरण। तो किस प्रकार पूजा की, वैसे भगवान को आरती करने से या भोग अर्पण कर श्रृंगार करने से संतुष्ट होते हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ किस प्रकार भगवान संतुष्ट हो रहे हैं कि जब हिरण्या भगवान को प्रेम भरी दृष्टि से, कटाक्ष भरी दृष्टि से जब देखते हैं, तो उस चितवन को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। जब हिरण्या उस, क्योंकि हिरण की आंखें बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर, वैसे इस भौतिक जगत में किसी को आँख की किसी का नहीं, किसी सीता माता का भी जो श्री रामचंद्र ने कहा है कि उस मृग न्यायनीय सीता कहाँ गई, जब रावण उनको हरण लेकर गए तो भगवान रामचंद्र उनको खोज रहे थे, तो भगवान कहते हैं कि उस मृग नयनी सीता कहाँ गई, वैसे कहकर वो पूछ रहे थे। इसलिए अगर किसी का उपमा दिया जाता है तो मृग के आँख के समान, उसकी आँखें बहुत सुंदर होती हैं, तो उस सुंदर आँखों से भगवान की, भगवान से चितवन भरी नज़रों से, प्रेम भरी नज़रों से प्रणय अवलोके उस श्याम सुंदर को देख रही है। तो जब वो देख रही है तब उसको देखकर श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। तो यही स्वभाव है अगर भक्तों का, कि अपना सुख न समझकर भगवान कैसे प्रसन्न हो, यही प्रयास में लगे रहते हैं भक्त वैष्णव। तो भगवान को प्रसन्न करती है इसलिए पूजा, तो ऐसे पूजा का सार होता है कि किस तरह भगवान प्रसन्न हो, किस तरह भक्त भगवान को प्रसन्न करे, वही भाव होता है। तो ये इसलिए गोपियाँ कहती है कि भगवान को प्रसन्न कर रही है श्री हिरण्या, चितवन भरी नज़रों से जो देखती है हिरण, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए पूजा, वो पूजा कर रही है भगवान की, उसको देख कर दृष्ट कर। तो भगवान की इस तरह पूजा करके भगवान प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर का रूप का दर्शन करते हुए धन्य है हिरण्या और हिरण, दोनों साथ मिलकर भगवान श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन गोपियाँ कहते कि हम दुर्भाग्य है कि हमारा पति हमारे साथ, यहाँ तक कि हमको भी नहीं जाने देते दर्शन के लिए। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सभी को अवसर दिया जाता है, माताओं को भी और प्रभु जी को भी, दोनों मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। अन्य संप्रदाय में आप देखेंगे तो माता जी का इतना अधिकार नहीं होता है, यहाँ तक कि कहीं कहीं ऐसे संप्रदाय है कि उनको तिलक करने का भी अधिकार नहीं है माताओं को, माता तिलक नहीं कर पाती, कर सकती है प्रभु जी या जो और है वो तिलक करते हैं, लेकिन माताएं तिलक नहीं करती है, लेकिन यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो माता माता का भी वही अधिकार है, क्योंकि उसको भी वो तिलक कंठी माला धारण कर सकती है। और प्रभु जी तो पूर्ण रूप से और साथ मिलकर भगवान की सेवा करती करते हैं, तो माता जी को भी पूरा पूरा अधिकार दिया गया। और विशेष करके प्रभुपाद ने जो अधिकार दिया है इस कलयुग में अद्वितीय, विदेश में माता जी भी भगवान की श्रृंगार आदि करती है, माताएं भी वहाँ प्रभु जी कम करते हैं और ठाकुर की सेवा ज़्यादा माताएं करती है, क्योंकि वहाँ भक्त कम रहते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद ने आज्ञा दी है कि माता भी वहाँ श्रृंगार कर सकती है, सेवाएं कर सकती है। तो दोनों साथ मिलकर ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की या श्याम सुंदर की सेवा कर सकते हैं। तो धन्य है उस हिरण और हिरणिया दोनों साथ मिलकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और गोपियाँ अपने आप को दुर्भाग्य समझकर कहते हैं कि हमें ये दर्शन भी नहीं होता है और हमारा पति भी साथ नहीं देते। तो इस प्रकार भगवान का गुणगान करते हुए गोपियाँ कहती है, और इसी प्रसंग को श्री चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा के लिए जब निकलते हैं और झारखंड जंगल में प्रवेश करते हैं और हरिनाम संकीर्तन करते करते सभी को प्रेम प्रदान करते हुए चैतन्य महाप्रभु बंगाल होकर बिहार में झारखंड जंगल में जब प्रवेश करते हैं, और उस जंगल में बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी आज भी प्रख्यात है, उस झारखंड का जंगल बहुत बड़ा जंगल है और वहाँ बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी उस झारखंड जंगल में रहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु विशेषकर वो जो राजपथ था, वो मार्ग बड़ा था, उस रास्ते पर नहीं चले, जो पथिक मार्ग से है, जो कोई कोई जंगलवासी जो चलते थे उसी मार्ग से चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य चल रहे थे जंगल के मार्ग से। तो उस मार्ग से जब जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, और साथ में बलभद्र भट्टाचार्य भी थे, और आगे रास्ते में धीरे धीरे करके जा रहे थे। तो थोड़ा आगे चले तो वहाँ एक शेर सोया हुआ था रास्ते में ही, और चैतन्य महाप्रभु तो मस्त संकीर्तन में मस्त होकर वो तो आंखों बंद करके चल रहे थे, और बलभद्र भट्टाचार्य उस शेर को देखकर घबरा गए कि अभी क्या होगा, शेर उठ जाएगा तो हम दोनों को खा लेगा, तो चिंतित हो गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते जैसे ही वो शेर का अपना चैतन्य महाप्रभु का शरण का स्पर्श हुआ और शेर उठ गया, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप कृष्ण बोलो, ऐसे ही जैसे महाप्रभु ने कहा कि आप कृष्ण बोलो तो शेर कृष्ण बोलते बोलते नृत्य करने लगा वही शेर, और चैतन्य महाप्रभु वहाँ से आगे। इस दृश्य को देखकर भट्टाचार्य को आश्चर्य पड़ गए कि कैसा चमत्कार है नाम संकीर्तन का। तो जो वेणु बजा रहे थे उस वेणु से आकृष्ट कर रहे थे श्याम सुंदर, और चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन से सभी जीवों को आकृष्ट कर रहे हैं, और आगे जा रहे उस संकीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु, और एक सरोवर आता है, उसी सरोवर में जब चैतन्य महाप्रभु स्नान करते और संध्या वंदन करते दोपहर के मध्यान्ह समय, तो उसी समय स्नान करते चैतन्य महाप्रभु स्नान करते तो एक हाथियों का झुंड आता है, उधर कई सारे हाथी आते हैं उस सरोवर में पानी पीने के लिए, और जैसे ही वो हाथी का झुंड आता है और चैतन्य महाप्रभु उस सरोवर का जल लेकर हाथियों पर छिड़कते और कहते हैं कृष्ण बोलो, जैसे ही महाप्रभु कहते हैं कृष्ण बोलो तो हाथी का झुंड अपने सूंड उठाकर नाचने लगते और कृष्ण कृष्ण कहने लगते हैं, और कीर्तन में जो चैतन्य महाप्रभु गा रहे थे उसी कीर्तन में नाचने लगते हैं पूरा हाथी का झुंड का झुंड। तो महाप्रभु ने इसी प्रकार पशुओं जो हिंसक प्राणी थे शेर आदि को भी नचाया, और हाथियों को भी जो नशे और उससे स्नान करके फिर चैतन्य महाप्रभु आगे चलते हैं, तो वहाँ थोड़ा ही आगे चलते वहाँ हिरण का झुंड आते हैं, उस जंगल में बहुत सारे हिरण आते हैं, पथे आते करे प्रभु उस संकीर्तन मधुर कंठ ध्वनि सुनी आयते मृगीगण। और महाप्रभु उस पथ से आगे चल रहे थे और उच्च स्वर से संकीर्तन कर रहे थे और मधुर आवाज में, जिस तरह मधुर वाणी बजाते हैं उसी प्रकार जब श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर गौरांग रूप में आए तो गाते तो कितना मधुर होगा। तो उस मधुर कंठ से जब कंठ मधुर कंठ ध्वनि सुनी, जब उस ध्वनि को सुनते हैं तो आयते मृगीगण, तो उस ध्वनि को सुनकर, यहाँ पर वेणु सुनकर आए हैं मृगीगण और वहाँ भगवान के मधुर कंठ की ध्वनि सुनकर मृगीगण आए और झुंड के झुंड आए दोनों साइड, दोनों तरफ चैतन्य महाप्रभु के चलने लगे साथ साथ में। दाहिने वामे ध्वनि सुनी आये प्रभु संगे, तार प्रभु अंग मुसे श्लोक पड़े रंगे। दाहिने बाहिने उस मुर्गी, उस हिरणिया चलने लगी और चलते चलते महाप्रभु ने उनको पीठ पर हाथ घुमाया दोनों तरफ, चैतन्य महाप्रभु ने उस हिरण को, और चैतन्य महाप्रभु उस हिरण को देखकर एक श्लोक उच्चारण किए। वो जो आज का श्लोक है वही चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ उच्चारण किए, यही श्लोक। धन्यास्म मूढगत्योऽपि हिरण्ययेताम् यानन्दनन्दम् उपात्त विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितम् सह कृष्णसारा दधु विरचिताम् प्रणयावलोके। बोली एक बार साथ में चैतन्य महाप्रभु के साथ, धन्यास्म मूढ गतयो हिरण्ययेताम् यानन्दनन्दम् पात विचित्रवेशम् आकर्ण वेणुरणितम् कृष्णसारा दधु विरचिताम् प्रयावलोके। तो उस हिरण के साथ चलते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उस हिरणियों को अपना हस्त कमल उनके पीठ पर घुमाया और धन्य हो गए वो हिरणिया। तो साक्षात वही श्याम सुंदर गौरांग रूप में आकर वो स्पर्श पाकर वो हिरण आदि धन्य हो गए। और चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार उस वृंदावन का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु आगे झारखंड से जा रहे हैं। तो हिंसक प्राणी भी वहाँ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके उनका संकीर्तन सुनकर अपना स्वभाव छोड़ दिए। वहाँ विस्तार से आगे वर्णन है कि फिर बाद में आगे जाते हैं तो हिरणियाँ आती है और शेर भी आते हैं, हाथी भी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के साथ वो संकीर्तन में लग जाते हैं और इतना संकीर्तन में वो लग कर हिरण और शेर आपस में सुंबन करने लगते हैं। जो अब स्वभाव है कि हिरण को देखकर शेर उनको खा जाते हैं, लेकिन उस नाम संकीर्तन के प्रभाव से, चैतन्य महाप्रभु की रूप माधुरी का प्रभाव से वो अपना स्वभाव छोड़ दिए और आपस में आलिंगन करने लगे हिरण और शेर। तो ये चैतन्य महाप्रभु का ये संकीर्तन और रूप माधुरी का दर्शन करके वहाँ पशुओं को भी धन्य कर दिए और इधर वेणु बजाकर श्याम सुंदर ने सभी व्रजवासियों को धन कर दिए। और इसी पद को लेकर श्री नरसिंह मेहता ने सुंदर गीत गाया है गुजराती में, वेणुनाद गुजराती में सुंदर पद है, पूरा वेणु के ऊपर मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस वेणुनाद जो भी हो उसमें वेणु का भी वर्णन है कि वेणु ने जो भगवान ने धारण किया था, उस वेणु ने उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कितने कितने कष्ट सहन किए, अपने शरीर में छिद्र तक वहाँ कष्ट सहन किए। वेणु जब बनाते हैं तो जो बांस होता है वो लीला होता है, सूखा हुआ नहीं, उनको सुखाया जाता है अग्नि में तपाकर, अग्नि में तपाकर सुखाया जाता है, फिर बाद में उनको उनके शरीर में उस बांबू में छिद्र किया जाता है। तो उनको तपाने के कहते हैं कि वो तपस्या बहुत करते हैं वेणु, तभी वो स्थिति प्राप्त किए हैं। पिछले हमने सुना कल को वेणु उस बामू ने उस वेणु ने कितना तपस्या किया होगा तो इस श्री श्याम सुंदर का अधरा अमृत का पान करते हैं, तो उस वेणु ने कम तपस्या नहीं की, अपने आप को जलाया है अग्नि में, अपने शरीर को विंध दिया है, तभी वो स्थिति प्राप्त किए हैं। तो इस तरह भक्ति रसामृत सिंधु में जो हमने इस जीव को, जीव में 50 गुण होते हैं, उस 50 गुण प्राप्त करने के लिए श्री प्रभुपाद ने वहाँ लिखा है कि हर एक भक्त को चाहिए कि कुछ उस गुण अर्जन करे, तपस्या के का तपस्या करके या वैराग्य प्राप्त करके उस गुण को प्राप्त करना चाहिए, ताकि भगवान कृष्ण हमें पसंद करें, हमें अपने शरणों में रखे। इसलिए जो वेणु है उसने बहुत तपस्या किया है, अपने आप को तपाया है, तपाने के कारण वो स्थिति को प्राप्त किए हैं, तभी वो श्री श्याम सुंदर का अधरामृत का प्राण पान कर पाती है। इस प्रकार ये धन्य है हिरण और आदि हिरणिया, जो कृष्ण सारा, जो काले रंग के हिरण होते हैं उसी को कृष्ण सारा यहाँ कहा गया है, जो हिरण के पति या नर होते हैं, तो दोनों मिलकर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और इसी दर्शन को देखकर, वो देखते हुए देखकर कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनको कृपा कटाक्ष से देखते हैं, और गोपियाँ कहते हैं कि धन्य है हिरण, और उनके पति के साथ वो भगवान का दर्शन करते हैं। तो इस तरह भगवान वेणु बजाते हैं और सभी को आकर्षित करते हैं। और हमारे जो तीन देव है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, और प्रयोजन का जो प्रणाम मंत्र है उसी में भी सभी को आकर्षण करने के लिए जो वेणु है उसका वर्णन हुआ है, उसका भी उच्चारण हम साथ में करेंगे। श्रीमान रास रसारंभे बंशी बट तटस्थिता कर्षण वेणु स्नेर गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुन। इसी प्रकार वेणु बजाकर सभी को आकर्षित करते हैं और विशेष करके गोपियों को। तो इस श्लोक पर व्याख्या करना बहुत कठिन है, फिर भी कुछ सुना इसी को आपके सामने प्रस्तुत किया है, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए, दास समझकर और आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी भगवान के शरण में कुछ सेवा अर्पित कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।